खुशनुमा मौसम के साथ शुरुआत करते हैं खुशनुमा जिंदगी के एक और सत्र की। बहुत ही हर्ष और गौरव के साथ अब मैं इस मंच पे आमंत्रित करने जा रही हूँ आदरणीय आशा दीदी जी को। आप हमारे बीच दिल्ली से पधारे हैं, करतल ध्वनि से हम दिल व जान से आपका आज डायमंड हॉल के इस मंच पर स्वागत करते हैं। यूं तो आपका व्यक्तित्व ही आपकी पहचान है, आपको बहुतों ने टीवी पर अथवा मंच पर अलग अलग कार्यक्रमों में सुना होगा, लेकिन फिर भी यहाँ बहुत सारे ऐसे आगंतुक भी हैं जो शायद पहली बार इस डायमंड हॉल में या इस माउंट आबू के परिसर में पधार रहे हैं। आप सभी के लिए बहुत ही संक्षिप्त में मैं दीदी जी का परिचय देना चाहूंगी। दीदी जी मात्र 8 वर्ष की आयु से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्टूडेंट रहे हैं। जितने ही काबिल आप स्टूडेंट थे उतने ही काबिल आज आप शिक्षिका भी हैं। आप अपनी पूरी पढ़ाई करके आपने मास्टर्स किया है सोशियोलॉजी के अंदर, आप अपनी यूनिवर्सिटी के टॉपर और गोल्ड मेडलिस्ट रहे। बहुत सारे विद्यार्थियों को आपने जीवन जीने की राह दिखाते हुए लेक्चरर की अपनी सेवाओं से निवृत्त होकर के आपने अपने संपूर्ण जीवन को इन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। पिछले 5 दशक 5 डेकेड से भी ज्यादा आप सेवाओं में अपने आप को पूर्ण रूप से लगाते हुए आपने अपने ही जीवन के द्वारा प्रेरित की हुई कई सारी ब्रह्मा कुमारियां तैयार की हैं, जो आज देश भर में और पूरे विश्व में सेवाएं कर रही हैं। आप दिल्ली में ओम शांति रिट्रीट सेंटर में नामक एक बहुत सुंदर 30 एकड़ में फैला हुआ रिट्रीट सेंटर है, वहाँ के आप डायरेक्टर हैं। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस विंग के आप चेयरपर्सन भी हैं और हमारी मंथली मैगजीन प्योरिटी के आप एसोसिएट एडिटर भी हैं। अ गुड स्पीकर, अ गुड राइटर एंड मोर देन दैट अ वंडरफुल पर्सनालिटी विद अ बैलेंस ऑफ लव एंड गॉडली लॉ। आपके द्वारा आज हम जानना चाहेंगे आपके जीवन का जो आधार रहा मेडिटेशन, आज हम भी आपके उन अनुभवों के द्वारा लाभान्वित होने के लिए उत्सुक हैं, चात्सुक हैं। आदरणीय आशा दीदी जी,
तू शक्ति है, तू
ओम शांति।
परमात्मा आवाहन के पश्चात अब मैं आवाहन करना चाहती हूँ हमारी बहनों का, जो दीदी जी का पुष्प गुच्छ द्वारा और बैज द्वारा स्वागत करेंगे। हम सब भी इस स्वागत की श्रृंखला में अपने दिल के भाव प्रकट कर सकते हैं।
ओम शांति, ओम शांति। खुशनुमा जिंदगी, और मुझे महसूस हो रहा है आप सब इस समय खुशनुमा हैं। खुश हैं? खुश? सभी खुश? फिर इस सेशन की जरूरत नहीं है? जरूरत है। सभा को देखते हुए मैं अपने टॉक का भी परिवर्तन कर रही हूं। मुझे बैठे बैठे याद आया, कुछ वर्ष पूर्व मैं समझती शायद इस बात को 25 वर्ष होने को आए हैं, हम लोग एक डायलॉग करते हैं और उस डायलॉग का नाम है कॉल ऑफ टाइम, कॉल ऑफ टाइम। और उस डायलॉग में जो पहला डायलॉग हुआ वो भारत में हुआ। उसको डिजाइन तो किया था विदेशियों ने, हमारे विदेश के सेवा केंद्र के बहनों ने, परंतु उसका शुभारंभ भारत में हुआ, माउंट आबू में। और उस डायलॉग में हमें दो व्यक्ति भारत से अलाउड थे, तो हम लोगों ने सोचा कौन हो सकता है। उन दिनों डॉक्टर अब्दुल कलाम, जो अपने देश के राष्ट्रपति रहे हैं, साइंटिस्ट के रूप से डीआरडीओ में उनसे मुलाकात हुई थी और हमने सोचा उनके इंटरेक्शन के पश्चात कि ये आत्मा अप्रोप्रिएट है जिनको हम इस डायलॉग में आमंत्रित कर सकते हैं। हम उनसे मिले, उन्होंने हमसे कई सवाल किए जो एक वैज्ञानिक के मन में नेचुरल रूप में उभरना नेचुरल है। उनका प्रश्न था, ये दिल्ली की बात है, क्या कारण है दो फैमिलीज, दोनों फ्रेंड्स हैं, दोनों के इकोनॉमिक सोशल बैकग्राउंड एक जैसे हैं, परंतु एक फैमिली के बच्चे बहुत अच्छे हैं, एक फैमिली बहुत शांतमय है, लेकिन दूसरी फैमिली में गड़बड़ चलती है, क्या कारण है? बच्चे भी इतने लायक नहीं, फैमिली में भी टसल है। हम लोगों ने एक्सप्लेन किया और उसके बाद वे माउंट आबू आए, डायलॉग में भाग लिया और मुझे वो दृश्य बिल्कुल क्लियर याद आ रहा है। दादी प्रकाश मणि जी लगभग 25 या 26 लोग थे सारे विश्व से। दादी उनसे मिल रही थी तो दादी जी ने डॉक्टर अब्दुल कलाम जी से प्रश्न किया, साइंटिस्ट साइंस बड़ी या साइलेंस? तो उनका ऑब्वियस उत्तर था साइंस। दादी ने दोबारा कहा, सोच के जवाब दो, साइंस बड़ी या साइलेंस? उनका दोबारा भी वही उत्तर था साइंस। दादी ने तीसरी बार कहा, अब वो कुछ नहीं बोले, चुप रहे। उसके बाद उनके साथ संपर्क बना रहा और जब वे भारत के राष्ट्रपति बने, उन दिनों उन्होंने जब हमारी मुलाकात होती थी एक दिन कहा कि अब मैं समझता हूं कि आपकी संस्था में साइलेंस को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। साइलेंस को जितना महत्व आपकी संस्था देती है उतना और कोई नहीं। और ये उन्होंने हमारी पर्सनल मुलाकात में बोले, नॉट टू बी कोटेड एनीवेयर बिकॉज इट वॉज ए पर्सनल कॉन्वर्जेशन। तो सच्चाई की बात यह है, हम चाहते हैं हमें ब्लिसफुल लाइफ मिले, आनंददायी लाइफ हो, और मेडिटेशन उस परम आनंद स्थिति को प्राप्त करने का साधन है। जब हम वेस्टर्न वर्ल्ड को देखते हैं तो वेस्टर्न वर्ल्ड में मेडिटेशन एक प्रकार से आज की भाग दौड़ की दुनिया में, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स की दुनिया में, हर समय चैलेंजेस का सामना करने वाली दुनिया में, हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में मेडिटेशन को वेस्टर्न वर्ल्ड रिलैक्सेशन का एक साधन मानता है। इफ यू मेडिटेट यू विल रिलैक्स। परंतु ईस्टर्न वर्ल्ड में, अपने देश में मेडिटेशन को रिलैक्सेशन का माध्यम नहीं, रिलैक्सेशन का साधन नहीं, परंतु अंतर्निहित शक्तियों और गुणों को उजागर करने का साधन माना जाता है। ईस्टर्न वर्ल्ड में मेडिटेशन को एनलाइटनमेंट का साधन माना जाता है। एनलाइटनमेंट आप समझते हैं, में मन और बुद्धि शांतमय हो, जिसमें दिव्य प्रज्ञा हो, जिसमें हार्मनी ऑफ हेड एंड हार्ट हो, जिसमें क्लैरिटी हो, डिसीजन मेकिंग इजी हो, एनलाइटनमेंट हम उसको कहते हैं। क्षमा करिएगा, आज मेडिटेशन हम भारत वालों ने भी एक वह माध्यम मान लिया है जो कि हमारे स्टेटस को प्रदर्शित करता है, स्टेटस सिंबल बन गया है। एक दूसरे से पूछते हैं आप कौन सा मेडिटेशन करते हैं, आप कौन सा मेडिटेशन करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, मेडिटेशन शब्द लैटिन वर्ड मेडेरी से आता है, MEDERI, विच मीन्स टू हील। वॉट, किस चीज की हीलिंग हो, शारीरिक हीलिंग की बात नहीं है, परंतु मनसा में, माइंड में, इंटेलेक्ट में जो बड़े बड़े घाव, जिनको हम अपनी वीकनेसेस कहते हैं, लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट, ईगो, हेट्रेड, जेलेसी एंड सो ऑन, और हम सोचते हैं ये मन बड़ा दुस्तर है, हवाई घोड़े की तरह है, इसको कंट्रोल कर लो, इसको जो इतने ज्यादा थॉट्स उठते हैं, इतनी ज्यादा बातें दिमाग में आती हैं, उन सब से इसको मुक्त करके एकदम थॉटलेस स्टेट को प्राप्त कर लें, वो मेडिटेशन की पराकाष्ठा है, ऊंचाई है। आज मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि टू बी थॉटलेस इज नॉट द एम ऑफ मेडिटेशन। आप थॉटलेस हो भी नहीं सकते, आप थॉटलेस नहीं हो सकते। Why? आपके थॉट्स कम हो सकते हैं, आपके थॉट्स कम स्पीड के हो सकते हैं, बट यू कैन नेवर बिकम थॉटलेस। Why? टू बी थॉटलेस इज ऑल्सो अ थॉट, ऑल द वन सिंगुलर वन। ठीक है, थॉटलेस होना भी तो एक थॉट है, तो थॉटलेस तो आप हुए नहीं। परंतु अगर इस एनर्जी को जो हमारे पास जबरदस्त है, आपके क्लासेस हुए होंगे, एक शक्ति जो हम सबके पास जबरदस्त है वो है हमारी संकल्प शक्ति, और उस संकल्प शक्ति का, थॉट्स का प्रॉपर चैनलाइजेशन करना मेडिटेशन है, योग है। थॉटोलॉजी में आज हमें ये समझ आती है कि जैसे शरीर में ब्लड क्लॉट्स होते हैं, सर्कुलेशन कंप्लीट नहीं होता और कई डिजीजेस उत्पन्न होती हैं, ऐसे थॉट क्लॉट्स भी हुआ करते हैं और वे थॉट क्लॉट्स न हो जिससे हमारे संकल्पों का, विचारों का सही मायने में प्रवाह बन सके, रचनात्मक हो, सुखदायक हो, आनंददायक हो, हमें उन क्लॉट्स का इलाज करने की आवश्यकता है। तब आप उस ब्लिसफुल स्टेट को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपने आप से कनेक्ट होना। आज बुरा नहीं मानिएगा, हम बहुत फॉल्स आइडेंटिटी से जी रहे हैं, बहुत फॉल्स आइडेंटिटी, और एक भी लेबल जो मुझे लगा हुआ है वो मेरे साथ जाने वाला नहीं है, सब यहीं रह जाएंगे। Who am I? मेडिटेशन में फर्स्ट स्टेप है रिटर्न टू योर रूट्स, रिटर्न टू योर रूट्स। आपकी रूट्स क्या है? कोई कल्चरल, कोई रिलीजियस रूट्स की बात नहीं है। आप जो हैं, आत्मा जो आपको परिचय मिला, उसकी सतह में जाना, रिटर्निंग टू योर ट्रू आइडेंटिटी इज द फर्स्ट स्टेप। जिस व्यक्ति को यही पता ना हो मैं कौन हूं, तो क्या करेगा? पर्पस भी नहीं उसका फुलफिल हो सकता, प्राप्ति का अनुभव भी नहीं हो सकता। परंतु जब उसे अपनी आइडेंटिटी का पता लगता है, तब वो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट में जीता है। व्हाट इज द रीजन दैट वी लूज आवर सेल्फ एस्टीम, सेल्फ प्रेस्टीज? क्या कारण है? क्योंकि हमने अपने आप को फॉल्स चीजों के साथ आइडेंटिफाई किया हुआ है। आई ओन, आई हैव, आई मस्ट, आई, और हर चीज ये मेरी है। क्या है मेरी? क्या ये देह भी मेरी है? सोच के देखिए। अगर मैं ट्रू आइडेंटिटी में नहीं जीती हूं, मुझे ब्लिस कहां से मिलेगा? अगर कोई चीज मेरे पास है और मैंने उसको लिया हुआ है जो मेरी नहीं है, जब मेरे से छिनेगी तो मुझे दुख और दर्द तो होगा। ये रीजन है कि हम अपने आप को इतने एफर्ट्स करने के बाद भी उस स्टेट में नहीं रख पाते हैं। जब मैं स्वयं को रिकॉग्नाइज करती हूं, द सेकंड स्टेप इज रिलैक्सेशन। मुझे पता लगता है कि ये मेरे गुण हैं, ये मेरी शक्तियां, मैं आत्मा हूं, ये पर्याप्त नहीं है। आत्मा क्या है? आप सारे दिन रिपीट करते रहिए मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा हूँ, कोई लाभ नहीं होने वाला। जब तक आप उसको एक्सपीरियंस में कन्वर्ट नहीं करते, आत्मा है क्या? और ओरिजिनली बेसिकली जो मेरी कोर वैल्यूज हैं, प्यूरिटी पीस लव हैप्पीनेस ब्लिस, जब मुझे ये पता लगता है कि ये तो मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, आई एम दिस, ऑटोमेटिकली व्यक्ति रिलैक्स्ड फील करता है। और जब हम स्वयं को इसमें स्थित करते हैं, द थर्ड स्टेज इज रिलीजिंग, विच मीन्स कि मैं स्वयं को जब उस स्वरूप में अनुभव करती हूं कि मैं शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, तो जो इसके विलोम है, मेरे थॉट्स में क्लॉट्स की तरह स्थित हैं, वे धीरे धीरे गलना आरंभ होते हैं, नेगेटिविटी समाप्त होना शुरू होती है, एंड दैट नेगेटिविटी इज रिलीज्ड। उसके बाद आई रिकवर, रिकवरी है अपनी पहचान, अपने गुणों की पहचान, स्वमान की स्थिति, ये मुझे सक्षम बनाती है जिससे मेरा संबंध उस रिसोर्स जो पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसमें ये सब गुण सागर की तरह है, उनके साथ जुड़ने को तैयार होता है। राजयोग मेडिटेशन में अभी मैं आ रही थी, आने से पहले मैं आदरणीय दादी जानकी जी से मिलने के लिए गई। मैंने उन्हें बताया कि मैं आपकी क्लास में आ रही हूं। दादी जी को कहा आप कुछ बताएं। दादी जी ने जो बात कही वो मैं आपको ट्रांसमिट कर रही हूं। दादी ने कहा वो पिता है और हम उसके बच्चे हैं, अगर ये संबंध जुट जाए तो जीवन में प्रेम शांति आनंद सुख का आना बड़ी बात नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, खेद की बात, लोग जब मेडिटेशन की बात करते हैं, मेडिटेशन को प्रोपगेट करने की कोशिश करते हैं, तो कई स्थानों पर कहते हैं यहां जो मेडिटेशन सिखाया जाता है उसमें परमात्मा का कोई रोल नहीं है। लेकिन हम बहनें आपको कहती हैं कि जब तक जीवन में परमात्मा को नहीं पहचाना है, तब तक जीवन में सुख शांति आनंद आए असंभव है। उसकी पहचान का होना जरूरी है। अपने देश के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, आप में से कुछ लोग शायद उन्हें जानते हों, डॉक्टर एल एस माथुर, जो मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। मातेश्वरी जी दिल्ली आई थी तो बहनें उन्हें निमंत्रण देने के लिए गईं। उनका सवाल था क्या आपकी मातेश्वरी जी मुझे भगवान के बारे में बताएंगी? उन्होंने बहनों ने कहा जरूर बताएंगी। वे मातेश्वरी जी से मिलने के लिए आए। मातेश्वरी हम कहते हैं हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट हेड, यहाँ वो चित्र नहीं है, फर्स्ट है, वहां पर आप देख सकते हैं पहला पहला जो स्लोगन लगा है ना इधर बाबा के साथ, नेक्स्ट वहां पर मातेश्वरी जी का है, जिन्हें हम मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती कहा करते थे, फर्स्ट हेड। तो डॉक्टर माथुर उनको मिलने के लिए आए और फर्स्ट क्वेश्चन बैठते सार किया, परमात्मा क्या है, कौन है? और ममा का उत्तर था, हम उन्हें ममा कहते हैं, ममा का उत्तर था परमात्मा एक बिंदी है, परमात्मा एक बिंदी है। उनको ये बात जच गई और कहते हैं साइंस भी ये स्वीकार करती, देयर इज अ पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी बियॉन्ड दिस यूनिवर्स। मातेश्वरी जी ने स्वयं उनको 7 दिन का कोर्स कराया और मुझे आपके साथ शेयर करते हुए बहुत गर्व का अनुभव होता है, फर्स्ट साइंटिस्ट बच्चा, और जिस दिन उनको ये ज्ञान मिला उनकी लाइफ का आखिरी दिन एक दिन भी क्लास मिस नहीं किया, इतनी एनर्जी ड्रॉ करते थे। और आज उनके मकान में हमारे दिल्ली में डिफेंस कॉलोनी का सेंटर चल रहा है। बात है कि परमात्मा के बिना इन इतनी श्रेष्ठ प्राप्तियों का होना संभव कैसे है? मान लीजिए हम लोग सब यहां बैठे हैं, हमारे में से कोई तो एक ऐसा होगा जिसकी कॉन्शियसनेस बहुत अच्छी होगी, सो वर्ल्ड में कोई तो होगा। अगर मुझे मोबाइल चार्ज करना है और मैं आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट करूं, चार्ज होगा? 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 नहीं होगा। मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जर के साथ कनेक्ट करना है। ऐसे ही हम आत्माएं अपनी अपनी लिमिटेशन वाली हैं, परमात्मा बियॉन्ड है, परम है। वो लेसन आपको मिलेगा आपके मेडिटेशन सत्रों में, ये लेसन आपको मिलेगा, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रही हूं, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस बताते हुए अगर परमात्मा के लिए कहा जाए कि परमात्मा सब जिधर देखो तू ही तू है, किसी को भी याद कर लो, कोई भी नाम ले लो, ऐसे नहीं होता। एक अनबिट्रोथ गर्ल, आप उसको कहें तुम अपने होने वाले पति को याद करो, किसको याद करेगी? उसकी बुद्धि भटक जाएगी। लेकिन आप उसको इतना बता दीजिए तुम्हारे होने वाले पति का नाम सो एंड सो है, लखनऊ का वो रहवासी है, एक इंजीनियर है। अब आपने उसकी मुलाकात नहीं कराई, बातचीत नहीं कराई, केवल इतनी 3-4 बातें बताई, नेक्स्ट मॉर्निंग वो पढ़ती है गोमती में बाढ़ आ गई, आप बताइए उसका ध्यान जाएगा या नहीं जाएगा? हां जी या ना जी? जाएगा। वो पढ़ती है लखनऊ के इंजीनियर्स की तनख्वाह बढ़ा दी गई, ध्यान जाएगा या नहीं जाएगा? वो पढ़ती है फला नाम का व्यक्ति जा रहा था, स्कूटर टकराया और चोट लग गई, घायल हो गया, उसका ध्यान जाएगा कहीं ये वही व्यक्ति तो नहीं? जाएगा। आपने मिलाया नहीं, कुछ नहीं किया, इतना परिचय दिया, उसकी बुद्धि एकाग्र। इसी रीति से प्यारे भाई और बहनों, यदि जीवन में इन चीजों की आवश्यकता है तो आपको वहां से प्राप्त होगी जो उसका दाता है, जो उसका सागर है और वो है परम पिता परमात्मा। तो परिचय होना जरूरी है। दूसरी बात और इम्पोर्टेंट है, परिचय अगर केवल है, आपने अगर संबंध नहीं जोड़ा है उनके साथ, तो प्राप्ति होगी? संबंध कैसे जुटेगा? वो है मेडिटेशन, योग। कोई भौतिक संबंध नहीं, मन से, मन की तार उनके साथ जुटे। और वो मेरा कौन है? दावात माई फादर मदर सुप्रीम, त्वमेव माताश्च पिता, त्वमेव बंधु सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रवणम, त्वमेव त्वमेव सर्वम देव देव। आप हमारे सर्वस्व हैं। संबंध नहीं तो प्राप्ति क्यों होगी? अब तीसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछने जा रहे हैं, आज दिन तक हम कहते थे हे प्रभु मुझे अपने मंदिर का दास बना लो, हे प्रभु ये कर लो। आप ये बताओ, दास बनना अच्छा या बच्चा बनना अच्छा? दास होगा उसको उतनी नौकरी उतनी तनख्वाह मिल जाएगी, और जो बच्चा बनेगा उसको पूरी इनहेरिटेंस मिलेगी। आपने क्या बनना है? आपने क्या बनना है? दास? दास या बच्चा? जो कहे बच्चा वो हाथ तो खड़े करो। अच्छा, ये तो सारी सदन सारा सारी सभा खड़ा है। बिल्कुल सही बात। जब बाप और बेटा बैठ के बात करते हैं, दास बाहर बैठता है। दास में शक्ति नहीं होती। आप टेलीफोन करते हैं तो क्या कहते हैं? भाई बाप बेटा बैठ के बात कर रहे हैं, हम अंदर नहीं जा सकते। तो आपने दास बनना तो नहीं है, बहुत समय दास बनने का सोचा था, लेकिन इस बार आप खुशनुमा जिंदगी में आए हैं, पलटा खाइए और हमने सच्चा बच्चा बनकर के जाना है। बच्चे को अधिकार है, बच्चा है तो वर्षा मिलेगा ना, इनहेरिटेंस मिलेगा ना, और वो इनहेरिटेंस क्लेम करने के लिए परमात्मा कहता और कुछ नहीं, मुझे स्नेह से याद करो। वेरी लॉजिकल। यदि परिचय है, संबंध है, लेकिन स्नेह नहीं है तो भी प्राप्ति नहीं है। तो स्नेह से याद करना वो जरूरी है। स्नेह भी हो, संपर्क भी चाहिए। संपर्क समझते हैं ना, आपका जिससे प्यार होता है, जिसके साथ घनिष्ठ संबंध होता है, कोई भी बात होती है फट से मोबाइल उसको मिलाते हैं, सूचना देते हैं। इसी रीत से उनके साथ संपर्क, बीच बीच में याद करते रहना ये जरूरी। जब ये होगा, परमात्मा को अपना बनाइए। जैसे परमात्मा कहते हैं आप जो हो जैसे हो मेरे हो, ऐसे ही हमें भी परमात्मा को अपना बनाना है, तब अधिकार होगा। तब हमारी लाइफ में जो चीज हम चाहते हैं अंत में, इतना कहते हुए कि यदि सदा खुश रहना है, ब्लिसफुल स्टेट का अनुभव करना है, तो एक तो सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखें, गुड विशेस रखें, और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने प्रति शुभ भावनाएं रखिए। बहन ने जो एक्सरसाइज कराई थी उसमें सबसे पहले प्लकिंग करने के बाद क्या कहा था? स्वयं के ऊपर डाली। स्वयं के ऊपर क्यों? जैसी मेरी स्मृति होगी वैसी मेरी स्थिति होगी। बार बार अगर मैं अपने आप को इस कॉन्शियसनेस में रखती हूं कि मैं मूर्ख हूं, मैं ऐसी हूं ऐसी हूं ऐसी हूं, तो ऐसी ही बन जाऊंगी। और यदि स्वयं को अच्छे संकल्प दूंगी तो वो चीज हमारी उभरेगी। और इसके पीछे लॉजिक ये है कि बेसिकली हम लोग बुरे लोग नहीं हैं, हम सब बहुत अच्छे लोग हैं, हम सब बहुत अच्छे हैं। उसकी निशानी है। हम में से ऐसा कोई है जो कहे मुझे हिंसा बहुत पसंद है? एक तो हाथ उठ जाए, एक भी नहीं। ऐसा कोई है जो कहे मेरे को गुस्सा बहुत आता है, मैं 24 घंटा 48 घंटा गुस्सा खूब कर सकता हूं? हाथ तो खड़ा कर दो। है कोई? एक भी नहीं, एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमारी नेचर ही नहीं है, हमारा स्वभाव ही नहीं है। हमारा स्वभाव, हमारी नेचर बहुत अच्छी है, लेकिन हम उसको जागृत नहीं करते। प्यारे भाई और बहनों, अंधकार मिटाना होता है तो क्या किया जाता है? लाइट जगाई जाती है ना, एक स्विच ऑन करिए अंधेरा मिटता है। ऐसे ही जो अपने अंदर अच्छाइयां हैं उनको स्मृति में लाइए, तो जो बुराइयां हैं वो फेड होती चली जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। यहां से अपने लिए ये गिफ्ट लेकर के जाएं, स्वयं को ब्लेसिंग्स दें कि मैं तो बहुत अच्छी आत्मा हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हूं, औरों को सुख देने वाली आत्मा हूं, औरों का भला चाहने वाली आत्मा हूं, आनंददायक आत्मा हूं। अगर ऐसे संकल्प स्वयं को देंगे तो स्थिति भी वैसी बनेगी। और ये स्थिति आपके घर के वातावरण को भी अच्छा बनाएगी। जो आप लोग कहते हो कि वातावरण ऐसा है बहन जी इसलिए हम भी ऐसे हो जाते, नहीं। एक अगरबत्ती सारे वातावरण को बदल सकती है, तो हम तो चैतन्य अगरबत्ती हैं, हम नहीं बदल सकते। अगर गुलाब का बीज आप कूड़े करकट के ऊपर डाल दें, जो उससे गुलाब पैदा होगा वो खुशबू देगा या बदबू देगा? खुशबू देगा। ऐसे अपने निजी गुणों को उजागर करेंगे तो जहां भी आप जाएंगे अपने वाइब्रेशन से वातावरण को भी अच्छा बना सकेंगे। मेडिटेशन बैठ करके करने मात्र की चीज नहीं है, ये हमारा लाइफस्टाइल है। इट इज आवर लाइफस्टाइल, जिसका संबंध हमारे विचारों के साथ, सोच के साथ, संकल्पों के साथ है। तो हो सकता है ये संभव हो सकता है। और बच्चा बन के जाइएगा, दास नहीं, बच्चा। और बच्चे के रूप से जो परमात्मा के गुण हैं वो मेरे गुण हैं। जब आप इन चीजों की स्मृति रखेंगे तो नेचुरली गुस्सा जब आएगा तो आपको याद आएगा, मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूं, गुस्से वाली आत्मा तो नहीं हूँ। कोई कहेगा मैं कामी क्रोधी गुस्से वाली हूँ, कोई कहेगा? आरती में गाते हैं आप, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, आरती में गाते हैं। तो इसमें परमात्मा कहते हैं, बच्चे इतना बता दो, तुम कहते हो विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, मैं इतनी सेंचुरीज से ये काम करता चला आया हूँ, मुझे इतना तो बता दो ये कॉन्ट्रैक्ट कब तक के लिए साइन किया है कि तुमने गलत करना और मैंने तुम्हारा ठीक करना है, कब तक के लिए? अब हमने परिवर्तन करना है और आज वह दिन है जिसको आप अपनी डायरी में नोट करें कि आज के दिन से मैंने अपने आप को दास्तान से छुड़ा करके परमात्मा के गोद का मालिक बनना है, ये संकल्प यहाँ से लेकर के जाना, ठीक है? परमात्मा की गोद में तो ब्लेस ही ब्लेस है, ठीक है ना? उनकी गोद में तो सदा ब्लेस ही ब्लेस है। परमात्मा के दिल में बैठना है, परमात्मा की गोद में बैठना है, परमात्मा के नैनों में बैठना है, ऐसे संकल्प लेके जाना है, ठीक है? इन शब्दों के साथ समाप्त करती हूँ। ओम शांति।
शांति। 2 मिनट के लिए इस सुंदर वातावरण में अपने मन को स्वयं पे एकाग्र करते हुए अनुभव करें, अपने सत्य स्वरूप का मैं इस देह रूपी दीपक में जगती हुई ज्योत हूँ, मैं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ, नश्वर शरीर में अजर अमर अविनाशी शक्ति, मैं परमात्म संतान जैसा पिता वैसे बच्चे मेरा पिता शांति का सुख का आनंद का सागर है, अनुभव करें। आपके सर के ऊपर परमात्मा की छत्र छाया है, उस छत्र छाया के नीचे मैं शांत स्वरूप सुख स्वरूप आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। परमात्मा से निकल रही आनंद के शावर के नीचे अपने आप को महसूस करें, अपने मन के सारे बोझ को धो दें परमात्मा के इस शीतल आनंद के झरने में। एक बार फिर से परमात्म संतान बनकर परमात्मा के समान सबको सुख
सुख देने वाला बने। धीरे धीरे अपनी चेतना को पुनः इस हॉल में लेकर आए, अपनी नेत्र रूपी खिड़कियों को खोलें और परमात्मा से प्राप्त सुख शांति और आनंद को नेत्रों की भाषा से बयां करने के लिए पुनः इस हॉल में लौट आए। ओम शांति।